नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आप सबका आज के गाता रहे मेरा दिल शो में। मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त, आपका होस्ट समीर खेरा, और ये शो है हमेशा की तरह इन पार्टनरशिप विद मेरा गाना डॉट कॉम, जो दुनिया की बेहतरीन कैरियोकी सर्विस है, जहां पर आपको 13,000 से भी ज़्यादा ट्रैक्स मिलते हैं 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में, ऑल फॉर लेस दैन $5 अ मंथ। जाइए, ज़रूर चेकआउट कीजिए मेरा गाना डॉट कॉम, गाने गाइए, गाने हमें भेजिए और हमें मौका दीजिए कि हम आपको अपने शो पर स्टार्स बनाएंगे आपके गाने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करके। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ब्रॉडकास्टर की। तो अगर पिछले हफ्ते का आपने शो सुना तो आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, अगर नहीं सुना तो थोड़ा सरप्राइज़ रखते हैं। वैसे सरप्राइज़ क्या, दिल बड़ा दुख रहा है इस बात से कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले उनका इंतकाल हो गया। वो 91 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम सब उन्हें बचपन से जानते थे, उनके प्रोग्राम सुनते थे, और शायद उनसे बड़ा रेडियो स्टार हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ और शायद ना होगा। पिछले हफ्ते हमने उनकी ज़िंदगी की बातें की थीं, उनसे गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने अपने करियर की बातें की और बहुत कुछ बताया। आज हम उनसे बात कर रहे हैं, बल्कि देखें बात तो नहीं कर रहे क्योंकि वो रहे नहीं इस दुनिया में। ये एक इंटरव्यू है जो मैंने कुछ अर्सा पहले किया था, और इस इंटरव्यू में मैंने उनसे बात की थी उनका जो लैंडमार्क प्रोग्राम था उसके बारे में। वो कौन सा प्रोग्राम था, मैं किस इंसान की बात कर रहा हूँ, चलिए आपको थोड़ी सी हिंट देते हैं, आप समझ जाएंगे। उसके बाद उनकी ज़िंदगी सेलिब्रेट करते हैं उनसे बातें करके। जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ याद आया आप लोगों को, यही बिगुल बजा करता था हर बुधवार की शाम 8 बजे, और उसके बाद एक मखमली सी आवाज आती थी कुछ इस तरह से।
बहनों और भाइयों, संगीत सेवक अमीन सयानी के दोस्तों।
जी हाँ, वही संगीत सेवक अमीन सयानी, उन्हें कौन नहीं जानता। बिना का गीतमाला, फिर सिबा का गीतमाला, और वो शो चला था 1953 से लेकर 1993 तक। तो अमीन साहब से हमारी गुफ्तगू हुई थी 2 हफ्ते पहले, हमने बातें की गीतमाला, गीतमाला किस तरह से शुरू हुआ और गीतमाला से रिलेटेड और बातें। तो आज के शो में हम सुनेंगे अमीन साहब का इंटरव्यू, तो चलते हैं सीधा इंटरव्यू की तरफ। तो अमीन साहब, एक बार फिर आपका वेलकम है गाता रहे मेरा दिल में। हमारी और आपकी बात तकरीबन 1.5 साल पहले हुई थी, तो आज हम गीतमाला की बातें करना चाहेंगे आपके साथ।
अब सिर्फ एक बात है कि वैसे तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, लेकिन हो अमेरिका में और मैं हूँ यहाँ मुंबई में, तो जरा जोर से बोलना होगा तुम्हें। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक?
आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, जैसे 50 साल पहले सुनाई देती थी वैसे ही सुनाई दे रही है बिल्कुल।
अच्छा अच्छा, तो तुमने पूछा कि गीतमाला कैसे शुरू हुई।
जी, तो हमें बताएं गीतमाला किस तरह से शुरू हुई, कुछ उसके बारे में बताएं।
अच्छा, मैं बताता हूँ। वो हुआ ये कि पहले तो मैं अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर था ऑल इंडिया रेडियो में
जी,
और बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद मैं हिंदी ब्रॉडकास्टर बनकर रेडियो सलोन पर थोड़ा थोड़ा सा काम करने लगा था। ये करीब 51 की बात है
जी।
और उसके बाद धीरे धीरे क्या है, एक दो प्रोग्रामों में मैं परमानेंट भी हो गया था, कुछ हिस्सा भी लेने लगा था, कमर्शियल भी पढ़ने लगा था।
अच्छा,
मगर मैं प्रोड्यूसर नहीं था, मैं सिर्फ एक वॉइस आर्टिस्ट था उस जमाने में
जी।
तो हमारे दफ्तर में एक दिन ये खबर फैली कि साहब जो सिबा वाले हैं, जो अंग्रेजी में सिलोन पर बिना का हिट परेड कर रहे हैं।
अच्छा।
उनको एक हिंदी प्रोग्राम चाहिए जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट।
अच्छा,
तो अच्छा ये मैंने बिनाका का नाम अभी तो ले लिया, आयंदा से नहीं लूंगा। क्योंकि वो मेरा जो प्रोग्राम हिंदी का था वो उसके नाम कई बार बदले, मगर मैं वही रहा, तो उसको सिर्फ गीतमाला कहूंगा
जी।
तो बहरहाल उन्होंने कहा एक ऐसा प्रोग्राम हमें चाहिए, उसमें हम हिट परेड नहीं रखेंगे, सिर्फ एक कुछ कॉम्पिटिशन रखेंगे, 100 रुपए का प्राइज रखेंगे।
अच्छा।
और एक जैकपॉट अंग्रेजी प्रोग्राम है भी है सिलोन के
जी,
तो उसमें करीब 100 रुपए के लिए करीब 400-500 लेटर्स हर हफ्ते आते हैं।
अच्छा।
तो हिंदी में मेरा ख्याल है, हमारा ख्याल है कि 40-50 भी आ जाएं तो इट इज ओके, डजंट मैटर, इट इज एन एक्सपेरिमेंट।
अच्छा।
तो लेकिन अब इसमें पैसा बहुत कम है, इसलिए जो जो प्रोड्यूसर बनकर इसको प्रोड्यूस भी करेगा, इसे प्रेजेंट भी करेगा, इसकी स्क्रिप्ट भी लिखेगा, और जो मेल आएगी उसे चेक भी करेगा।
अच्छा,
उसको कुल मिलने वाले हैं हर हफ्ते 25 रुपए।
ओहो, तो आपने 25 रुपए में ये सारे काम किए उस वक्त?
हाँ, सारे काम सुनो तो सही। वो हुआ ये कि बाकी जितने लोग थे वो जरा नाक चढ़ाने लगे।
अच्छा।
बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो थे कहने यार ये इतना काम लिखो भी, प्रेजेंट भी करो और फिर चेक भी करो, मेल पूरी, ये क्या बात है यार। क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन है तो फिर उसका रिजल्ट भी निकालो और निकाल कर वक्त पे भेजो भी अगले हफ्ते के लिए, तो ये बहुत 25 रुपए में कौन करेगा इतना। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, एक ओवल्टीन का डब्बा मिल रहा है कमर्शियल करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा।
अच्छा।
और हमीद भाई जो मेरे गुरु हैं जी, थे मतलब
आपके बड़े भाई भी थे,
बहुत जो सिखाया था उन्होंने, मैंने पूरा जो कुछ सीखा था उनसे और हिंदुस्तानी से, और जो भी कुछ मुझे अपने जीवन में कुछ जितना पता था, और संगीत का शौक तो था ही, तो सब होता था कि उस जमाने में हम 8 गाने चुनते थे
जी
और बजाते थे, और उन गानों को एक अपना क्रम देना पड़ता था पॉपुलैरिटी का सुनने वालों को।
अच्छा।
और फिर उस क्रम से उस क्रम से हम एक फाइनल लिस्ट बनाते थे।
अच्छा।
और उस फाइनल लिस्ट से जिन लोगों को क्रम मिल जाता था वो 100 रुपए का जैकपॉट उन्हें
मिलता था,
शेयर करते थे
जी।
तो हमने सोचा कि चलो करें, बड़ी जोश के साथ मैंने स्क्रिप्ट लिखी, रिकॉर्डिंग की, और फिर रिकॉर्डिंग सुनी बाकायदा वही स्टूडियो में, और फिर उसके बाद वो टेप भेज दिया सिलोन।
अच्छा।
हम इंतजार कर रहे थे कि कब पहला प्रोग्राम आता है, तो पहला प्रोग्राम आया और इत्तेफाक से बहुत क्लियर सुनाई दिया
जी।
और हम इंतजार करने लगे मेल कब आती है, तो मेल आने में करीब 3-4 दिन लगे शुरू होने में।
अच्छा।
क्योंकि एक हफ्ते तक हम सोचते थे 40-50 आएंगे लेटर्स। मैं तो दुआ करता था कि या खुदा 100 आ जाए तो बहुत अच्छा है।
जी जी जी।
तो पता है कितने लेटर्स आए उस पहले प्रोग्राम के लिए?
हमने सुना है तकरीबन 9,000
लेटर।
वाह क्या बात है।
और यानी मैं तो पहले तो उछला के आया, हिट हो गया प्रोग्राम मेरा। फिर मैं बैठ गया सर पकड़ करके, यार सबकी चेकिंग तो मुझे ही करनी है। और हर लेटर चेक करना पड़ता था, वो बड़ा
जी बिल्कुल
कॉम्पिटिशन था, और मैं बड़ा गांधी जी का शिष्य होने की वजह से
जी
सच्चाई में बहुत बिलीव करता था और हर चीज बड़ी बारीकी से देखता था। तो मैंने कहा ये तो मैं मर जाऊंगा। तो खैर शुरू किया मैंने दिन रात उसको चेक करके, फाइनल लिस्ट बनाई और किया और भेज दिया।
अच्छा।
तो, उसके बाद जब भेजा और सेकंड प्रोग्राम जब ब्रॉडकास्ट हुआ
जी,
तो उसकी मेल का इंतजार जो किया हमने, तो पता है कितने लेटर आए? उसके डबल आए, 16,000-18,000।
अच्छा।
तो मैं तो फिर तो घबरा गया कि यार ये कैसे कर पाऊंगा मैं। तो खैर ऑफिस वालों ने भी कुछ मदद दी मुझे, और मैं कॉलेज से अपने किया, कॉलेज के दोस्तों से भी 2-3 लोगों को ले आया।
अच्छा।
और इस तरह हम सब बैठ कर चेक करने लगे और प्रोग्राम शुरू हुआ। धीरे धीरे करीब 2-2.5 बरस के बाद, यानी 52 दिसंबर में हुआ था शुरू
जी,
और 1954 जब आया
जी,
तो तब तक मेल बढ़ चुकी थी 65,000 लेटर्स पर वीक। और हम सब घबराए कि यार क्या कैसे होगा, क्योंकि सारा टेबल जितने थे दफ्तर में वो भर रहे हुए थे लेटर्स के साथ। क्योंकि हमें 3 हफ्ते तक उसे रखना पड़ता था
जी
मेल को।
अच्छा।
कहीं कोई कह दे कि नहीं मैंने तो सही लेटर भेजा था, तो हमारा जो था उसको फिर चेक करना पड़ता था। तो फिर इतने तंग आ गए सब कि क्लाइंट ने भी कहा और हमने भी सलाह दी उनको कि साहब ये तो बहुत ही हिट हो चुका है प्रोग्राम
जी,
अभी कोई जरूरत नहीं है, मेल वेल कट कीजिए
जी,
और इतना पैसा जो उसमें डाल रहे हैं बजाय इसके आप 1 घंटे का प्रोग्राम बना दीजिए, पहले आधे घंटे का था
जी,
1 घंटे का बना दीजिए, उसे हिट परेड काउंटडाउन प्रोग्राम बनाइए।
अच्छा।
तो और इस तरह से वो काउंटडाउन प्रोग्राम शुरू हुआ।
तो
अब तुम पूछोगे काउंटडाउन में
जी वो सब पूछेंगे, लेकिन उससे पहले अमीन साहब मैं पूछना चाहूँगा कि तो 2 साल मतलब आधे घंटे का शो रहा और जिसमें इनाम होता था, और आप 25 रुपये पर हफ्ते में 9,000 से ज़्यादा चिट्ठियाँ संभालते थे, देखते थे, तो
65,000,
वाह क्या बात है। तो ये कहाँ कहाँ सुना जाता था जब शुरू में प्रोग्राम शुरू हुआ, तो कितनी ऑडियंस थी?
जी बताता हूँ, हुआ ये था कि जब अंग्रेज गए यानी हिंदुस्तान से 1947 में गए
जी,
और उसके बहुत जल्द बाद सिलोन से भी चले गए
जी,
और सिलोन में साउथ ईस्ट एशिया कमांड के ब्रिटिश सरकार के
जी
कुछ बड़े अच्छे ट्रांसमीटर्स थे।
अच्छा,
100 किलोवाट के भी थे, कुछ 30 किलोवाट के भी थे। तो ये बढ़िया ट्रांसमीटर्स अंग्रेजों ने सिलोन गवर्नमेंट को दान कर दिए।
अच्छा,
ये करके कह करके आप चलाइए, और उस पर कमर्शियल सर्विस शुरू हुई थी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और तमिल में भी, और सिंगली जो उनकी अपनी भाषा है उसमें भी
जी।
बहरहाल तो ये इनके जो 100 किलोवाट जो ट्रांसमीटर था उनका,
अच्छा,
वो सिलोन से यानी उत्तर की तरफ नॉर्थवर्ड्स का बीविंग होता था
जी,
तो सारा एशिया,
अच्छा,
पूरा एशिया, और एशिया से बढ़ते बढ़ते वो नॉर्थ मॉरिशस वगैरह कवर करते करते
ईस्ट अफ्रीका में भी,
साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच गया।
अच्छा,
तो अंदाजा ये था कि करीब 21 करोड़ लोग यानी 1960 शुरू होते होते पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी। खैर, तो शुरू शुरू में तो खैर इतनी नहीं थी और सुनाई देता था बहुत हर जगह, लेकिन कंपटीशन में हमने कहा था कि प्राइस के लिए सिर्फ हिंदुस्तान से ही आप
अच्छा हिस्सा ले सकते हैं।
वो बाकी लोग भी लिखते थे लेटर, मगर वो प्राइस क्लियर नहीं हुआ इसी
जी। दोस्तों, गाता रहे मेरा दिल पर आप सुन रहे हैं अमीन सयानी साहब का इंटरव्यू। तो आइए बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। तो अमीन साहब, हमने सुना है कि एक वक्त था जब ऑल इंडिया रेडियो ने जो हिंदी फिल्मी गाने हैं वो बिल्कुल बैन कर दिए थे, तो उसकी वजह से भी जी
वो उससे पहले हुआ है, मैंने गीत गाना शुरू करने से पहले हुआ था।
अच्छा,
कि 51 के आसपास कहीं या 52 के बीच में कि बंद कर दिया, उन्होंने पूरा बैन कर दिया हिंदी फिल्म म्यूजिक।
अच्छा,
और हिंदी क्या था कि ऑल इंडिया रेडियो दुनिया का बेहतरीन ब्रॉडकास्टिंग मीडियम था बीबीसी के टक्कर का।
अच्छा,
तो एंटरटेनमेंट बहुत बहुत जरूरी हिस्सा था, और एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था हिंदुस्तानी फिल्म संगीत। ऐसा ऐसा जबरदस्त हिंदी हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत आ रहा था
बिल्कुल
भारत में कि लोग पागल हो जाते थे
बिल्कुल,
और हमारी पूरी परंपरा, पूरे कल्चर का ये आईना था
जी,
और बड़ी सरल भाषा में बहुत बड़ी बड़ी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, शायरी, ये वो गायन
जी, जी, जी।
वो आता था। तो बैन जो कर दिया था, तो इसलिए करीब 6 महीने के अंदर अंदर लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो जो पॉपुलर लिस्टनरशिप थी वो सब हटकर वहां से सिलोन पहुंच गई।
अरे,
और उसके बाद शुरू हुआ था गीतमाला।
अच्छा,
तो हमारी लिस्टनरशिप बनी हुई थी वहाँ।
अच्छा,
और गीतमाला जब शुरू हुई तो पता लगा लोगों की आंखें खुल गई कि हाँ भाई, मनोरंजन भी बहुत जरूरी चीज है, बिना मनोरंजन के कितना ही अच्छा संचार क्यों नहीं हो
जी,
मीडियम क्यों ना हो, मगर वो सूखा हो जाता है, वो नीरस हो जाता है, उसमें मधुरता नहीं रहती, उसमें मुस्कान नहीं रहती।
अच्छा,
तो इसलिए वो जोरों में शुरू हो गया और चलता रहा फिर।
तो अमीन साहब, बात करते हैं फिर जब आपने वो कंपटीशन से हटकर जब आप काउंटडाउन की तरफ आए, तो क्या रिएक्शन रहा जब 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ, जो पहला प्रोग्राम था, जो आपको कोई उसकी याद हो तो हमें जरूर बताएं।
भाई, पहले इससे पहले कि वो ब्रॉडकास्ट होता
जी,
मैं ही बहुत परेशान हो गया कि यार ये कैसा फॉर्मेट है।
अच्छा,
ये तो प्रोग्राम में आएगा और उसकी वो एक दो तीन चार नंबर गाने जरा ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, मतलब एक ही गाना शायद साल भर भी चले तो जब तक वो पॉपुलर रहे।
बिल्कुल।
तो हमने कहा यार ये ठीक अच्छा नहीं है, वो पुराना ही रहने दीजिए ना।
अच्छा।
नहीं बदलो तुम करके देखो, सारे देश में सारी दुनिया में ये काउंटडाउन प्रोग्राम 4-5 मुल्कों में बहुत हिट हुआ है।
अच्छा।
और सिलोन पर भी हिट है इंग्लिश में
जी।
तो ये भी तुम करके देखो। तो पहले जो 2-3 प्रोग्राम किए तो उसमें जरा लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा, क्यों हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रोग्राम हिंदी गीतों का नहीं होता था।
अच्छा।
तो थोड़ी देर लगी उनको समझने में, मुझे भी देर लगी समझने में, लेकिन मैंने कहा कि यार इसको लोगों को समझाने के लिए कुछ करना चाहिए
जी।
तो मैंने फिर वो संगीत सीढ़ी इन्वेंट की।
अच्छा।
मैंने कहा देखिए एक संगीत सुनारों का ये सोचे कि एक लोकप्रियता की संगीत सीढ़ी है पॉपुलरिटी की
जी।
और उसमें 16 पायदाने हैं, पहले 16 पायदाने होती थी ना
जी। बिल्कुल बिल्कुल।
16 ही पायदाने रही
जी।
और उसमें नीचे से लेकर ऊपर जाता है गाना, अगर पॉपुलर होता रहे, नहीं तो अटक कर फिर नीचे आ जाता है और आउट हो जाता है।
अच्छा।
और जो पहली टॉप की पायदान होती थी उसको हमने छोटी की पायदान का नाम दिया
जी।
और उसके पहले बिगुल भी बजाते थे,
ये नंबर 1 है जी।
तो ये लोगों को ऐसा भा गया था।
अच्छा।
कि इसकी तो हवा एकदम ऐसी चली कि जब 54 में शुरू हुआ ये काउंटडाउन शो और 55-56 तक पहुंचते
जी
वही हाल हुआ था इस प्रोग्राम का जो बाद में महाभारत दूरदर्शन पर जिसका हाल हुआ था।
बिल्कुल,
ये लोग सब कुछ छोड़कर अपने रेडियो के पास बैठ जाते थे और बस किसी को सुनते थे, सड़कें भी जरा कम, ट्रैफिक भी कम हो जाता था और रेडियो सबके पास तो नहीं होता था। तो सब वो म्युनिसिपैलिटी जमाने की पॉपुलैरिटी को देख कर गीत माला की वो पार्क्स में बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा देते थे और उस पर चलाते थे प्रोग्राम और वो पार्क्स इतने खचाखच भर जाते थे लोगों से कि वो जो क्राउड जो था वो छलक कर सड़कों पर आ जाता था और सड़कें भी बंद हो जाती थी।
तो खैर अमीन साहब, तो ये बताएं कि किस तरह से आप पिक करते थे कि भाई कौन सा गाना नंबर 1 पे आएगा, चोटी पर आएगा, कौन सा चला जाएगा, किस तरह से वो डिसीजन लिए जाते थे, उसके बारे में कुछ बताइए।
वो सबसे पहले तो हमने 2 तरीके निकाले, एक तो रिकॉर्ड सेल्स।
अच्छा।
यानी जो रिकॉर्ड बिकते थे ना
जी
उनके लिए बड़ी बड़ी दुकानें थी सारे हिंदुस्तान में फैली हुई, तो हमने करीब 12 मेन शहरों में
जी
जो बड़ी बड़ी दुकानें थी उनसे सीवा वालों के सेल्समैन के जरिए।
अच्छा।
हर हफ्ते हम लिस्ट मंगवाने लगे।
अच्छा।
और उन दुकानों को यानी उनकी मेहनत आने के लिए सीवा वाले खुद टूथपेस्ट वगैरह का बड़ा हैम्पर भेजा करते थे उनको हर महीने।
अच्छा।
तो वो लोग भी बड़े शौक से करते थे, उनके नाम भी कभी कभी मैं ले लेता था।
अच्छा।
भाई देखिए सब ये लोग बहुत मदद कर रहे हैं, तो उनकी बड़ी सही लिस्ट होती थी, वो हर हफ्ते भेजते थे।
अच्छा।
और साथ ही साथ मैंने कहा चलो फरमाइशें भी शुरू कर देते हैं।
अच्छा।
और ताकि हमें दोनों मिले रिएक्शंस।
अच्छा।
तो मगर फरमाइशों का ये हुआ कि करीब 6 महीने के बाद मैंने ये महसूस किया कि प्रोग्राम इतना हिट हो चुका है।
अच्छा।
कि इसमें रिगिंग शुरू हो गई है।
अरे
कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स और कुछ प्रोड्यूसर्स।
अच्छा।
प्रोड्यूसर्स वो अपने गानों को पॉपुलर करवाने के लिए गलत गलत यानी फेक फरमाइशें भेजने लगे थे।
अरे
तो जैसे एक दिन मैंने एक गाना काफी चल रहा था तो उसके लिए करीब 13-14 फरमाइशें आई थी, तो मैंने सब रखी, कोई पूना से, कोई अहमदाबाद से, कोई आगरा से, तो कोई दिल्ली से, तो कोई हैदराबाद से।
अच्छा।
और फिर मगर पोस्टकार्ड जो मैं पलटा, पोस्टकार्ड तो सबके पीछे वो पोस्ट मार्क था कालबा देवी मुंबई
तो एक ही जगह से सब पोस्ट हुए थे। अच्छा।
तो फिर मैंने वो बिल्कुल बंद कर दिया।
अच्छा।
और एक नया तरीका शुरू किया, यानी सेल्स रिपोर्ट्स तो आती रही
जी,
मगर साथ ही साथ ہم نے ہمارے سننے والے نوجوانوں کا اتساہ دیکھتے ہوئے ہم نے کہا بھائی دیکھیے آپ لوگ گروپس میں سنتے ہیں تو کیوں نہ آپ اپنا گروپ بنا کر ایک ایک ریڈیو کلب شروع کیجیے. تو اس ریڈیو کلب میں ہوتے تھے قریب سمجھو 10 سے لے کر 20 ممبرس. تو میں نے کہا دیکھو کوئی فیس نہیں ہے, تم اپنا کلب کرو, اس میں جو بھی ایکٹیویٹیز کرنا چاہو کرو, مگر اپنے کلب کا ایک لیٹر ہیڈ چھپوا دو ایڈریس کے ساتھ, اور اس میں ہمیں لکھ کر اپنے لوگوں کی رائے لے کر سب ساتھ مل کر پروگرام سنو, اور ہر ایک ہفتے رائے بھیجو کہ اب پہلے 16 گانے ہمارے یہ ہیں.
اچھا,
تو قریب 400 کلبز ہو گئے تھے تیار, جن میں سے ڈیفینیٹلی 1/4 تو ہر ہفتے لکھا ہی کرتے تھے, اور اس طرح سے ہم سیلز اور فرمائش دونوں کی فرمائش نہیں سوری ریڈیو کلبز کی رائے ان دونوں کی بنا پر ہماری سلیکشن ہوتی تھی, اور یہ اتنی صحیح سلیکشن ہوتی تھی اتفاق سے کہ ایچ ایم وی والے مجھ سے کہتے تھے کہ پلیز امین بھائی آپ ہم کو ذرا ایڈوانس میں بتا دیجیے نا کہ کیا آپ کا پاپولرٹی کا لسٹ ہو رہا ہے, ریکارڈنگ جب ہو جائے آپ کی تو ہمیں ذرا بتا دیجیے, کیونکہ اس کے ایک ہفتے بعد وہ پہنچے گا ریڈیو سیلون ٹیپ, تو آپ بتا دیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلی بار کم از کم دکانوں میں پہنچ جائے وہ گانا.
ارے
تو گانا آپ کا پاپولر ہوگا لیکن اگر وہ بکنے کے لیے ہوگا ہی نہیں کاپی اس کی تو کیسے بکے گا.
اچھا اچھا اچھا, تو یہ
اتنا اس کا زور تھا, بہت لوگ اس پر پاگل تھے, دیوانے تھے, خط بھی لکھتے تھے بنا کسی پرائز کے, قریب 3-4 ہزار لیٹر تو آتے ہی تھے.
کیا بات ہے, تو امین صاحب
باقاعدہ چن کر میں جواب بھی دیتا تھا کچھ کچھ.
آپ نے ان میں سے کچھ لیٹرز ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس یا نہیں رکھے کوئی؟
میں نے لیٹرز تو نہیں رکھے ہیں لیکن کچھ کچھ جو خاص لیٹر تھے میرے دماغ میں کچھ کچھ یادیں اس کی دھندلی سی باتیں ہیں.
جی
اگر وقت ہو آپ کے پاس تو میں سناؤں.
ضرور سنائیے بالکل.
جیسے ایک صاحب نے ہم کو لکھا کہ صاحب میری سگائی ہو گئی ہے اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, 6 مہینے کے بعد شادی ہونے والی ہے, لیکن میری منگیتر جو ہے وہ میرے شہر میں نہیں رہتی, وہ اپنے شہر میں رہتی ہیں, دور ہیں, مگر ہم ہر ہفتے گیت مالا کے ذریعے مل لیتے ہیں کیونکہ ہم دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ دونوں اپنے ریڈیو کے پاس بیٹھ کر ہم یہ پروگرام سنتے ہیں. اس کا میں نے جواب بھی دیا کہ ہاں بھائی دیکھو تم دونوں سن رہے ہو نا, تو ایک دوسرے کو بھی لکھنا اور مجھے بھی لکھنا بتانا کہ دونوں کا نام اب تم نے سنا کہ نہیں, اور وہ لیٹر پھر آتے تھے کہ ہاں بھائی ہم نے سنا, تھینک یو ویری مچ. اور کچھ کچھ یہ بھی ہوتا تھا کہ پرسنل لیٹر آتے تھے کچھ کچھ لڑکیاں, چونکہ ریڈیو میں دکھائی نہیں دیتا
جی
تو میری آواز سن کر اور گیت مالا کی وہ کا مزہ لے کر وہ بار بار لکھتی, کچھ پریم پتر لکھتی تھی.
ارے آپ کو پریم پتر آنا شروع ہوئے,
بتانا پڑتا تھا کہ ارے آپ ایسا مت پریم پتر لکھیے, اور پھر تو میری شادی جب ہوگی تب تو خاص طور پر میں کہتا تھا بھائی میری شادی ہو گئی اب پلیز مت لکھیے ایسے, تو ایسے ایسے چلتا تھا, بڑا مزہ بھی آتا تھا, کبھی کبھی امبیرسمنٹ بھی ہو جاتا تھا. ایک امبیرسمنٹ یوں ہوا کہ ایک بار چٹھی آئی جس میں ایک مہیلا نے بڑا خوبصورت شال بن کر میرے لیے بھیجا تھا.
ارے واہ,
تو میں بہت گھبرایا, تو میں نے لکھا ان کو دیکھیے دیوی جی تھینک یو ویری مچ, آئندہ کوئی بھی سننے والا پلیز مجھے کچھ بھی نہ بھیجے, اور خاص کر لڑکیاں کچھ نہ بھیجیں کیونکہ میری شادی ہو گئی ہے اور میری بیوی بہت ناراض ہو جائیں گی, وہ ڈیوورس کر دیں گی مجھے. تو اس کا جواب یوں آیا
جی
کہ لیٹر شروع ہی ہوا یوں کہ بیٹے امین,
ارے
تم کو پتا ہے میں تمہاری ماں کے برابر ہوں, میری عمر یہ ہے, اس زمانے میں میں جتنا بھی سب سے قریب 30-40 سال زیادہ
جی,
تو کہنے لگے کہ میں ماں کی یا نانی کے برابر ہوں اور تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اس لیے میں نے بھیجا ہے.
دوستو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد امین صاحب سے گپوں کا سلسلہ جاری رہے گا,
کیونکہ آپ کا جو پروگرام تھا وہ ظاہر ہے کہ فلموں سے وابستہ تھا اور گانوں سے وابستہ تھا, تو کبھی آپ کو कोई प्रेशर आया संगीतकारों से या फिल्म मेकर से कि भाई हमारा गाना सबसे ऊपर आए ताकि हमारी ज़्यादा पब्लिसिटी हो, फिल्म ज़्यादा चले, कभी इस तरह का भी एक्सपीरियंस हुआ आपको?
शुरू शुरू में क्या हुआ था, ये जब इतना पावरफुल हो गया
जी
कि लोगों की को बिजनेस मिलना भी इसी के आधार पर मिलता था।
बिल्कुल,
अगर छा गया गीतमाला में तो फिर उनको मतलब पतला पता चलता था कि ये ज्यादा पॉपुलर हैं
जी,
तो ज्यादा उनको बिजनेस मिलता था।
बिल्कुल,
तो कोशिश करते थे लोग कि कुछ मुझे कोई प्रेजेंट भेजने की या कुछ करने की, तो मैं हमेशा वापस कर देता था, या फिर बहुत सीनियर लोग होते थे तो बड़े प्यार से उनको एक्सेप्ट कर लेता था और कहता था कि भाई आपने ये दिया है, एक शॉल भेजी है या एक साड़ी भेजी है बीवी के लिए तो ठीक है, पर प्लीज आयंदा मत भेजिए क्योंकि इसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है।
अच्छा अच्छा,
लेकिन आगे चलकर एक जमाना, मेरा ख्याल 50s या 60s में एक जमाना बड़ा अजीब सा आ गया मेरे पर।
अरे?
एक वो यूं हो गया कि दीवा वालों ने मुझे फोन करके कहा कि साहब हमें फोन मिला है सिने म्यूजिक डायरेक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से।
अच्छा।
और वो एक डेलीगेशन लेकर आना चाहते हैं फला फला दिन, तो तुम भी आ जाओ।
अच्छा।
वो कुछ कंप्लेन करना चाह रहे हैं, बहुत नाराज लग रहे हैं। तो मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या है, तुम गया।
अच्छा।
मीटिंग में और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, नाम नहीं लूंगा उनके।
अच्छा।
बड़े सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स से वो कहने लगे कि देखिए साहब आपका प्रोग्राम बेहद पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है
जी।
लेकिन अभी क्या हो गया कि हम सीनियर्स को देखिए हमारे गाने इतने इतने हिट हुए हैं, आप ही के प्रोग्राम में चले हैं, लेकिन आजकल हमारा नाम बहुत कम आता है, हमारे गाने तो हम दे रहे हैं, म्यूजिक तो दे रहे हैं, लेकिन वो गीतमाले में बहुत कम आ रहे हैं।
अच्छा।
और इस तरह से हमारा धंधा खराब हो रहा है, तो इसमें मतलब ये कि आप कुछ दाल में काला है आपका सिलेक्शन।
अरे
कहीं ना उल्टी सीधी चाल चल रही है, चोरी चपाटी चल रही है
जी।
आप इस प्रोग्राम को बंद कर दीजिए।
अच्छा।
मैंने कहा कि साहब देखिए, एक तो मैं गांधीवादी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से सब ये पोलिंग करवाता हूँ, और इसमें दो तीन लोग ऐसे होते हैं जो हमारे एक दूसरे पर चेक रखते हैं, यानी सेवा वाले भी और सेवा वालों के सेल्समैन भी और मेरी कंपनी वाले भी प्रोडक्ट जो थे, और मैं खुद जरूरत से ज़्यादा चेक करता था। तो मैंने कहा ये मैंने उनके सामने रख दी सारी लिस्टें।
अच्छा।
तो रेडियो क्लब्स के लिस्टें भी और सेल्स लिस्टें भी और सब, मैंने कहा देखिए सब ऐसा हम करते हैं, तो वो मान गए बेचारे।
अच्छा।
अच्छे लोग थे। मैंने कहा आप तो मेरे गुरु हैं भाई, मैं आप तो सीनियर लोग हैं, भीष्म पितामह हैं सब
जी, जी,
संगीत
जी।
के, और मैं आप सबका फैन भी रहा हूँ, और आपका जब दौर चल रहा था तो आप सबके सभी गाने अच्छे अच्छे बजे हैं
जी।
तो आप ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं कुछ गड़बड़ करूंगा। तो मान गए, मुझे दुआएं दी और कहने लगे अच्छा देखो फिर भी बेटा हमारे लिए कुछ करो।
अच्छा।
तो मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, सोचता हूँ। तो फिर एक आध हफ्ते सोचकर मैंने सिवा वालों से कहा और अपने अपनी कंपनी वालों से भी कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि हम करीब कुछ महीनों तक ये अनाउंस नहीं करेंगे कि नंबर एक दो तीन चार कौन सा है।
अच्छा।
उसी लिस्ट में बजाएंगे जिसकी जो पॉपुलैरिटी की लिस्ट है
जी,
लेकिन हम ऐसे ही बजाएंगे बिना कहे।
अच्छा।
तो देखें क्या होता है। तो ये जब शुरू किया तो दो तीन ही हफ्तों में लोग बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो गया यार, ये तो पूरा
फॉर्मेट बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ। तो फिर मैं गया, फिर वापस मैं फिल्म वालों के पास गया, फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रोड्यूसर थे जीपी सिप्पी उन दिनों।
अच्छा।
तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा देखिए ये गड़बड़ हो रही है, क्यों ना आप रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजें ऑम्बड्समैन बनकर, और हर हफ्ते इस पर नजर रखें आप, हम हफ्ते हर हफ्ते आएंगे आपके पास, अपनी सारी लिस्टें आपको दिखाएंगे, आप मुतमईन हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, और जब साइन करेंगे वो लिस्ट तभी हम अल्लाह कर उसे प्रोग्राम में डालेंगे।
अच्छा।
तो ये शुरू हो गया सिलसिला। पहले सिप्पी आए बहुत साल भर के लिए करीब, उसके बाद बीआर चोपड़ा भी उसमें बने ऑम्बड्समैन।
अच्छा।
उसके बाद बीए श्रीराम बोरा बने, ये तीन تینوں نے بڑی مدد کی ہماری
جی.
اور ان کی دعائیں لے کر ہم نے پھر وہ اناؤنسمنٹ شروع کر دیا, تو لوگوں نے چین کی سانس لی کہ ہاں بھائی اب یہ سنگیت سڑی واپس آ گئی,
واپس آ گئی. بالکل بالکل. تو امین صاحب کی کچھ ایسے بھی گانے ہوتے تھے جو سیڑھی سے سنگیت سیڑھی سے اتر جاتے تھے, اور مجھے یاد ہے آپ کہتے تھے پنر پرویشی گیت آیا ہے, کچھ اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی, تو وہ کس طرح سے ہوتا تھی؟
پنر پرویش کا کیا ہوتا تھا
جی,
کبھی کبھی تو ہوتا تھا یہ کہ گانا پاپولر ہوا
جی,
کسی وجہ سے چل پڑا فلم آنے سے بھی پہلے
جی,
اور چلتے 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 اور مطلب فلم میں دیر ہو گئی تو گانا نیچے آ گیا, لوگ سنتے ہی نہیں تھے کہیں اور,
بالکل,
تو ان کو خیال ہی نہیں رہتا تو وہ نیچے چلا جاتا تھا. پھر فلم آتی تھی, اگر فلم اچھی سکسیسفل رہتی
جی
تو گانا پھر ابھرتا, تو اس کو پورا پرویش کرنا پڑتا, اس کا
اچھا
پورا پرویش ہی ہوتا. تو ہمارے جو فلم پروڈیوسرز کے ریپرزینٹیٹیوز تھے
جی
انہوں نے بڑی اچھی صلاح دی کہ دیکھو کبھی 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 گانا پاپولر ہوتا ہے تو ایک ایک گانا دو دو بند میں چل سکتا ہے
جی,
جیسے چلے تھے کچھ گانے ناگن کے گانے مثلاً دو دو برس چلے.
ارے
تو
اچھا.
انہوں نے کہا صاحب اگر یہ اچھے اچھے ہٹ گانے چلتے رہے اتنا تو پھر اور فلموں کو چانس نہیں ملے گا.
بالکل.
تو تم ایسے کرو کہ ایک لمٹ کر دو.
اچھا.
کہ گانا 18 ہفتے بجے
جی,
یا 25 ہفتے پہ, شروع میں 18 ہفتے کا تھا, 18 ہفتے بج چکا گانا تو اس کو تم بگول بجا کر سرتاج گیت بنا کر ریٹائر کر دو.
اچھا سرتاج گیت مجھے یاد ہے جی 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 جی.
وہ شروع کیا ہم نے تو اس سے اچھا رہا کافی, مگر بہت برس بعد یہ بھی لگا کہ یار اب گانا پاپولر ہے تو اس کو بتانا تو چاہیے لوگوں کو کہ یار ہم بجا نہیں رہے ہیں اس کو.
بالکل بالکل.
سنگیت سیڑھی پر لیکن اس کی جھلک بجا دیتے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گانا بھی پاپولر ہے.
اچھا.
تو حالانکہ 18 بار بچ چکر ریٹائر ہو چکا تھا
جی.
جیسے ایک گانا مجھے اب تک یاد ہے کہ اے بھائی ذرا دیکھ کے چلو
جی جی جی,
یہ گانا ایسا چلا تھا صاحب کہ سب ریٹائر ہو گیا, ریٹائر ہونے کے بعد بھی چلتا رہا تو ہم نے جھلک بجائی, اور جب سالانہ پروگرام آیا تو ہم نے دیکھا کہ اگر یہ گانا ریٹائر نہ ہوا ہوتا تو نمبر ون آتا.
اچھا جی جی جی.
یہ بھی بتانا پڑا ہم کو کہ یہ ہے, مگر کیا ہے ہماری پدھتی یہ ہے, چلو ٹھیک ہے سب کو چانس ملے تو اچھا ہے.
تو امین صاحب آپ نے اے بھائی ذرا دیکھ کے چلو کہا تو مجھے منا ڈے صاحب کی یاد آ گئی, انہیں کا گانا تھا تو ابھی حال ہی میں گزرے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ کی کوئی آپ کے تعلقات تھے؟ مجھے میں نے کچھ فوٹوز دیکھی ہیں منا ڈے صاحب.
یہ سارے جو گائک اور سنگیتکار اور گیتکار تھے اس زمانے کے
جی
وہ میرے بھائیوں کی طرح تھے.
بالکل.
اور منا دا سے خاص پریم تھا کیونکہ اتنے وہ پیارے انسان تھے
جی,
اتنے زوردار انسان تھے اور اتنے جوشیلے انسان تھے کہ جب بھی ان کو دیکھو کبھی چھپ کر نہیں چلتے تھے, کبھی سینہ تان کر ہی چلتے تھے ہمیشہ
جی,
اور ہمیشہ ایکٹیو رہتے تھے, یہ لگتا تھا کہ اسپورٹس مین چلا آ رہا ہے.
اچھا.
اور ادار بھی تھے, کسی غریب نے کبھی مانگ کر لی ان سے تو دے بھی دیتے تھے پیسے چپ چاپ
جی,
اور سب سے بڑا اچھا برتاؤ کرتے تھے, لیکن پھر بھی تھے بڑے اسٹرکٹ, بڑے پابند تھے وہ کہ کوئی ٹیڑھی میڑھی بات کوئی کرے یا شو میں کوئی بدتمیزی کر دے تو فوراً ڈانٹ دیتے تھے.
اچھا.
لیکن گاتے تھے جوش کے ساتھ, چلتے تھے جوش کے ساتھ, ہر چیز ان کی جوشیلی ہوتی تھی.
تو پھر بات کرتے ہیں امین صاحب گیت مالا کی, تو کبھی کوئی ایسے بھی گانے آئے جو اوپر یا چوٹی پر پہنچے لیکن آپ ان سے سہمت نہیں تھے, آپ کو لگا ارے یہ کیسے ہو گیا, یا کوئی ایسا گانا جو کبھی نہیں پہنچا بہت اچھا گانا تھا, آپ کی جو اپنی سوچ تھی اس کے حساب سے؟
ایک ہی اس کی مثال دوں گا
جی,
اور ایسی مثالوں کے بارے میں مجھ سے نہ ہی پوچھو بھائی.
اچھا.
تو اچھا ہی ہے آپ کا میری بدنامی ہو جائے گی. تو ایک اچھا دیکھو اس سے پہلے کہ میں وہ آنسر کروں اتنا کہہ دیتا ہوں
جی
کہ منا دے ایک 94 سال کی عمر میں
جی
گزرے, اور اس سے پہلے بہت برسوں تک تکلیف میں رہے
جی,
پھر بھی اسٹیج پر کبھی کبھی گاتے رہے لیکن لگتا تھا کہ تھک گئے ہیں, کچھ تکلیف ہے دل میں تکلیف ہے
جی.
اور اس کے بعد پھر ہاسپٹلائز جب ہو گئے تو کافی لمبے عرصے تک ہاسپٹل میں رہے
جی,
اور پتہ نہیں ان کی راتیں کیسی گزرتی تھی، اور ان کے بارے میں ہمیشہ مجھے وہ گانا میری صورت تیری آنکھیں کا یاد آتا تھا کہ پوچھو نا کیسے
میں نے رین بتائی. جی جی جی،
ہر پل جیسے ایک یگ بیتا، یگ بیتے مجھے نیند نہ آئی. تو یہ منا ڈے تھے. خیر تو ابھی کیا تھا سوال اس کے بعد؟ ہاں کچھ ایسے گانے بھی تھے جو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کیسے آ گیا.
اچھا
ہاں ایک گانا دیکھو، یہ کلیان جی اور آنند جی جو تھے،
جی
آنند جی تو ہیں،
جی جی
یہ دونوں میرے بالکل سگے بھائیوں کی طرح
اچھا
رہے، اور میں ان کا بہت عاشق بھی تھا. ان کے گھر بھی آنا جانا ہوتا تھا، وہ بھی آتے تھے.
اچھا
اور ہماری دونوں بھابیاں اتنی ادار تھیں، بہت اچھا اچھا کھانا کھلاتی تھیں، اور ان کے بچے بھی سب ساتھ، بہت مزہ آتا تھا ان کے گھر جانے میں.
جی
اور ان کا سنگیتکار بھی لاجواب تھے، کیسے کیسے گانے دیے.
بالکل.
لیکن ایک سال ان کا ایک گانا تھا سہیلی کا.
اچھا
کون سا گانا تھا وہ؟ مکیش اور لتا کا شاید گانا تھا سہیلی کا، اس وقت بول نہیں یاد آ رہا ہے مجھے.
کوئی بات نہیں،
وہ نمبر ون آ گیا.
اچھا
ہماری پدھتی کے لحاظ سے تو ٹھیک تھا نمبر ون، لیکن مجھے غصہ آیا کہ کلیان جی اور آنجی بھائی کے 3-4 اور اس سے 10 گنا زیادہ اچھے گانے
گیت
مالا میں ہی بجے تھے اور اچھی طرح بجے تھے، تو یہ نمبر ون کیسے آ گیا؟
اچھا
اب نمبر ون آ گیا تو مجھے بجانا پڑا.
جی
اور کسی وجہ سے میں اس کو لسٹ چینج تو نہیں کر سکتا تھا.
بالکل
بجایا میں نے، مگر میں نے کلیان جی بھائی سے بھی کہا کہ بھائی یہ آپ کے استر کا گانا نہیں ہے.
اچھا
تو گیا آپ نے بجایا ضرور.
تو کچھ ایسے بھی گانے تھے،
تو گانے ہوتے تھے مگر زیادہ تر صحیح، کیونکہ لوگوں کو بھی تب تک ان کی پرکھ چمک اٹھتی تھی.
اچھا
اچھا میوزک کیا ہے، اچھے بول کیا ہیں، گیت مالا سن سن کر، میرے اور بھی پروگرام سن سن کر، اور بھی پروڈیوسروں کے پروگراموں کو سن سن کر، کیونکہ ہم سب بڑے یعنی سنگیت کے عاشق تھے اور شاعری کے عاشق تھے، اور بہت محنت سے ہم اچھا اچھا گانا سن کر بجاتے تھے.
جی
اور گیت مادہ میں تو خیر ہم چنتے نہیں تھے، جنتا چنتی تھی.
تو امین صاحب آپ کے کچھ ایسے بھی گانے تھے جو، بلکہ آپ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا گیت مالا کی چھاؤں میں، جو ایسے گانے جو گیت مالا تک نہیں پہنچ سکے لیکن چھاؤں میں رہ گئے، لیکن بہت خوبصورت گانے تھے، ان میں سے کوئی ایسے کچھ دو یا چار گانے آپ کو یاد آتے ہیں جو لگتا ہے آپ کو کہ کیوں نہیں پہنچے گیت مالا میں؟
بات یہ ہے کہ میں 21 سال کا ہو گیا ہوں، میری یادداشت چھلنی ہو گئی ہے. گیت مالا کی چھاؤں میں جتنے بھی گانے فل بجتے تھے، چھاؤں کے گانے،
جی
وہ ایک سے ایک لاجواب گانے ہوتے تھے، اور اس میں ایک سے ایک ایسے گانے ہیں لوگوں کو سنیں، لوگ سنیں گے تو سنگیت پریمی جو ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ سب سوچیں گے کہ یار یہ کیوں نہیں آیا گیت مالا.
بالکل گانے تو ہیں امین صاحب، گانے تو گانے ہیں، لیکن جو آپ کی پیشکش ہے اس پورے پروگرام کی وہ بالکل زبردست ہے، میں نے خود سنی ہے. بلکہ جب میں آپ سے ملا تھا بامبے میں آپ کے آفس میں، تو آپ نے مجھے ایک سائن کاپی بھی دی تھی گیت مالا کی چھاؤں میں. میں بالکل آئی ٹریجر دیٹ، اٹس اے اسپیشل تھنگ فار می، تو اس کے لیے شکریہ آپ کا. اچھا تو ایک چیز بتائیں کہ جب آپ ریڈیو سیلون سے 1988 میں ختم ہوا، اس کے بعد وویدھ بھارتی پر آئے، تو کچھ بدلاؤ آیا فارمیٹ میں یا بالکل ویسا ہی فارمیٹ چلتا رہا اور اسی زور و شور سے بڑھتا رہا پروگرام؟
میں گیت مالا جو تھی وہ وویدھ بھارتی میں تو بڑی دیر میں آئی تھی، 80s میں آئی،
89 میں. جی
اس سے پہلے تک وہاں چلتی رہی ایک گھنٹے کے پروگرام بن کر.
جی
اور کیا ہوا کہ تب تک کافی اس کی ریسیپشن خراب ہو چکی تھی سیلون کے ٹرانسمیٹرز کی.
اچھا
اور سنائی نہیں دیتا تھا. وجہ پہلی وجہ اس کی یہ تھی کہ رشیا ماسکو سے اور چین سے پیکنگ سے
جی
ہزار کلو واٹ پر وہ شارٹ ویو کے اس بینڈ پر آتے تھے.
اچھا
اور اس ہزار واٹ کے کلو واٹ کے اسٹیشن کے سامنے
جی
چھوٹے چھوٹے موٹے 100 کلو واٹ تو کوئی مطلب نہیں تھا.
بالکل
تو وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے تھے.
اچھا
اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ یار اس کو ہندوستان میں لایا جائے، وویدھ بھارتی پہ لایا جائے، اور بڑی مشکل سے یہ لوگ آل انڈیا ریڈیو والے راضی ہوئے.
اچھا
مگر پھر جب آیا تو یہاں بھی چل پڑا. شروع میں آدھے گھنٹے کا پروگرام رہا، پھر शायद एक घंटे का हुआ था।
अच्छा।
तो शुरू शुरू में आधे एक घंटे का सिलोन पर बजता था, आधे घंटे का वर्जन बजता था यहाँ, यानी टॉप 8 गाने यहाँ बजते थे और टॉप 16 वहाँ बजते थे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो वहाँ से बंद हो गया और यहाँ पूरा एक घंटे का प्रोग्राम शुरू हो गया।
तो एक बात और मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को शायद मालूम नहीं होगा ये, कि आपने तकरीबन 31 एपिसोड किए जो दूरदर्शन मेट्रो चैनल्स पर भी आए बिना का गीतमाला के, उसके बारे में बताएं वो किस तरह से हुआ। और
वो क्या हुआ कि जब 41वीं सालगिरह मनाई जाने वाली थी
अच्छा
गीतमाला की, तो साहब उन्होंने कहा सिवालों के यार तुम क्यों ना गीतमाला का एक रिट्रोस्पेक्ट
अच्छा
शुरू करो टीवी पर, उसमें कंपटीशन ना हो, यानी करंट हिट परेड ना हो, पुराने गाने जो हिट परेड में बच चुके हैं
उन्हें याद
कर रिट्रोस्पेक्ट हो।
अच्छा।
करीब करीब वही जो मैं कर रहा हूँ गीतमाला की छाव
छाव में, बिल्कुल।
लेकिन वहाँ छाव के गाने नहीं बजते थे, सिर्फ जो टॉप गाने थे वो।
अच्छा।
मगर फिर उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम शुरू से करोगे
जी,
तो उस जमाने में तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, तो ब्लैक एंड व्हाइट तो टेलीविजन में कलर है तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम उस जमाने से शुरू करो जबकि कलर आ गया था फिल्मों में।
अच्छा।
तो हमने उसी जमाने से शुरू किया और बजाते रहे, टॉप गाने बजाए, उसमें कई लोगों के इंटरव्यूज भी आते थे, स्टार्स के, म्यूजिक स्टार्स के कई इंटरव्यूज भी आए।
अच्छा।
लेकिन ये सिर्फ 31 हफ्ते चला प्रोग्राम
जी
दूरदर्शन पर, मेट्रो चैनल पर। मगर क्या हुआ कि ये रेडियो प्रोग्राम और उसके पर जब टेलीविजन प्रोग्राम आया तो ये इनकी टूथपेस्ट जो थी इतनी चल पड़ी कि कोलगेट वालों को जरा फिक्र होने लगी कि यार ये तो बहुत चल रहा है, इसको तो कुछ करना चाहिए।
जी जी जी।
तो उन्होंने एक जबरदस्त ऑफर दिया, 113 करोड़ या थी कुछ, यानी 132 करोड़।
अच्छा।
सिवा को
जी
सब आप हमें ये टूथपेस्ट बेच दीजिए। उन्होंने पैसा लेकर अपना टूथपेस्ट उनको बेच दी।
अच्छा।
तो जब बेचने लगी ये बेच दी टूथपेस्ट तो मैं चौंका, मुझे खबर देर में मिली। फिर मैंने सिवा ने से कहा क्या यार आप बेचने वाले हैं तो फिर ये प्रोग्राम क्यों चला रहे हैं आप।
अच्छा।
हम खुद आपसे कहना चाह रहे थे मगर शर्मा रहे थे कि अब बंद कीजिए इसको, तो वो भी बंद हो गया।
अच्छा।
और रेडियो भी बंद हो गया, मतलब वो उन लोगों ने ले लिया।
अच्छा।
तो उसके बाद कोलगेट वाले मेरे पास आए, कहने लगे कि देखिए अब हमने सिवा का टूथपेस्ट खरीद ली है और उसका नाम हम रख रहे हैं कोलगेट सिवा का टूथपेस्ट
जी,
लेकिन हम चाहते हैं कि गीतमाला जो है वो आप हमारे कोलगेट टूथपेस्ट के लिए करें।
अच्छा।
मैंने कहा कि ये गलत बात है सर, आपको हमेशा वो एक टूथपेस्ट से जुड़ा रहा और वो टूथपेस्ट अब आपके पास है, तो आप कोलगेट सिवा का गीतमाला करिए ना। वो कह रहे नहीं 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 हम ये अभी नहीं चाहते, हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते।
अच्छा।
तो उसके बाद वो एक और प्रोग्राम मैंने उनको दिया था और ये गीतमाला खामोश हो गई थी करीब 1.5 साल
जी।
उसके बाद उन्होंने उनका फोन आया कि अरे यार देखो बात अमीन भाई ऐसी है कि हमने तो चाहा था कि उसको ना चलाएं लेकिन वो अपने आप चल पड़ी है टूथपेस्ट।
अच्छा। ओके।
अब आप कोलगेट सिवा का गीतमाला चला सकते हो तो चलाइए। तो मैंने कहा जरूर चलाएंगे, तो फिर 2-3 साल तक वो भी चली।
तो अमीन साहब आपने गीतमाला शुरू किया, 40 साल चलाते रहे उसे, और मुझे मालूम है कि 25 रुपये आपको पहले मिलते थे, लेकिन उसके बाद जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो फिर कितने पैसे मिलते थे ये बताएं जरा हमें।
वो क्या एक घंटे का जब हुआ था।
अच्छा।
तो 25 रुपये से तो मुझे शायद 125 मिलना शुरू हुए।
अच्छा।
और उसके कुछ महीनों बाद जब फिर भी पता चला कि प्रोग्राम तो ऐसा हिट जा रहा है।
अच्छा।
तो उसके फिर 1000 रुपए हो गए और फिर अंत में 1500 मिलते थे मुझे।
तो ये पूरी प्रोडक्शन जो क्रिएटिव काम था इसके पीछे।
हाँ।
गीतमाला के पीछे वो सब आप ही करते थे मतलब।
बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ वो ये था कि जब तक वो हिट परेड के सिलेक्शन के लिए सब वो थोड़ा सा स्टाफ चाहिए होता था
जी,
और उसमें सेवा वाले भी मदद करते थे और
अच्छा
अपने मेरी फर्म के लोग भी मदद करते थे, मगर जहाँ तक प्रोग्राम प्रोडक्शन का सवाल था
जी
वो बिल्कुल मेरे हाथ में था।
अच्छा।
मैं ही उसको स्क्रिप्ट भी लिखता था, रिकॉर्डिंग भी करवाता था, माफ करना,
कोई बात नहीं,
और रेडियो सिलोन का जो स्टूडियो
जी,
जो रेडियो सिलोन की एजेंसी का जो स्टूडियो था उसी में मैं काम करता था।
अच्छा।
और काम करने का ये तरीका होता था कि गाने वाने सुनकर मैं उनको पहले स्क्रिप्ट बनाता था, स्क्रिप्ट बनाकर फिर स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर देता था मेरी कमेंट्री।
अच्छा।
और फिर वो मिक्सिंग करते थे मेरे रिकॉर्डिस्ट।
अच्छा अच्छा अच्छा।
फिर उसको मैं पूरा प्रोग्राम चेक करता था फिर भेजता था।
अच्छा, तो जाहिर है अमीन साहब की जो अमीन सयानी की पहचान जो हुई वो हुई गीतमाला की वजह से, उसके बाद जाहिर है कि आपको और बहुत सारे प्रोग्राम मिले और आपका करियर आगे बढ़ा। तो अगर गीतमाला नहीं होता तो आपको क्या लगता है अमीन सयानी कहाँ होते?
भाई ऐसा था कि मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मुझे बहुत श्रद्धा है ऊपर वाले पर और मुझे बड़ा प्रेम है अपने सुनने वालों से, तो जितना हो सका गीतमाला जब तक चली करीब 45 साल तब तक मैंने डूब कर इसमें भी काम किया और कुछ और भी बड़े अच्छे प्रोग्राम मेरे इत्तेफाक से चल पड़े थे तब तक
जी।
एक तो था फिल्मी मुकदमा,
बिल्कुल,
जिसमें लोग आते थे और हम उन्हें बिल्कुल वो कटहरे में खड़ा कर मुलजम के उन पर इल्जाम लगाते थे, सब उनसे पूछ कर
एस कुमार
के साथ होता था,
मुझे याद है
कॉमेडी प्रोग्राम होता था
जी जी, एस कुमार का फिल्मी मुकदमा था, बिल्कुल याद है
एस कुमार का
जी जी जी, बहुत।
और ये एक प्रोग्राम जो मेरे इंटरव्यूज के, जनरल इंटरव्यूज के, म्यूजिक इंटरव्यूज के जो प्रोग्राम हुआ करते थे
जी,
संगीत के सितारों की महफिल
जी जी जी,
वो तो साहब जबरदस्त तरीके से दुनिया के कई मुल्कों में भी चला है
जी,
न्यूयॉर्क और ऑटावा और
न्यूजीलैंड वगैरह में भी जी,
और फिजी में भी चला और दुबई में चला दूरों में।
तो अमीन साहब, अगर हमारे पास 2 घंटे होते आज तो हम 2 घंटे भी बातें करते रहते, लेकिन वक्त हमारा थोड़ा कम है तो बस आपसे आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे, और अगर आप क्लोजिंग में कुछ हमारे लिसनर से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कहें, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे शो पर आए, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू।
मैं ये कहूँ कि मुझे ये प्रोग्राम आपका जो है वो बहुत प्यारा है, हालांकि मैं सुन नहीं पाता हूँ, लेकिन समीर से जब बातचीत हो जाती है तो मेरा नाता फिर जुड़ जाता है आपके स्टेशन से, तो बहनों और भाइयों आप सबको मैं विश करता हूँ, आप खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, अपने भारत को मत भूलिए, अपने देश को मत भूलिए, आप पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान को मत भूलिए, किसी देश के हो अपने देश को हमेशा याद रखिए, अपने देश के संगीत को हमेशा याद रखिए, और हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत को तो कभी ना भूलें, और उनमें कहीं बीच बाज कहीं अमीन सयानी की याद आ जाए तो उसे भी याद कर लीजिए।
गाता रहे मेरा दिल पर, आपने सुना इंटरव्यू अमीन सयानी के साथ जो मैंने कुछ साल पहले किया था। अफसोस की बात यह है कि अमीन सयानी हमारे बीच नहीं रहे, और देखें इंटरव्यू के आखिर में कितनी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि कुछ भी कीजिए अपने देश को याद रखिए, चाहे आप हिंदुस्तान से हों, पाकिस्तान से हों या किसी और देश से, अपने देश को मत भूलिए, और ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तानी संगीत है उसे कभी मत भूलिए। हाँ, और बीच में अगर अमीन सयानी की याद आ जाए तो उन्हें भी याद कर लीजिए। अमीन सयानी साहब को हम कभी नहीं भुला सकते, उन्होंने इतनी अच्छी हमें यादें दी हैं बिनाका गीतमाला की, और जो खूबसूरत प्रोग्राम किए उन्होंने जिनकी आज आपने बातें सुनी। तो दोस्तों, अमीन सयानी द लेजेंड हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमेशा उन्हें हम याद करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का जो शो था आपने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया है तो हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, बताइए कि कैसा लगा आपको शो। इसके साथ ही चाहते हैं आपसे इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गाता रहे हम सबका दिल।